जयधवला पुस्तक 15वी लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धे श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पावर तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक में चारित्र मोक्ष अपना नाम का अर्थाधिकार देखते हुए अभी हम पुरुष संख्या 59 पर आ गए। हमने पुष्टिकरण संबंधी व्याख्यान देखा और उसके बाद उसी के विषय वाली जो मूल गाथाएं हैं, उन मूल गाथाओं का यहाँ विवरण चल रहा है। उसमें से पहली मूल गाथा हमने पढ़ी थी और उसके 3 भाष्य गाथाएं भी पढ़ी थी। यहाँ हम आए हैं 59 पेज पर। तो ये जो अभी हमने देखा था कि जो अनंत पृष्टि बनती है हर एक कषाय में, और संग्रह पुष्टियों की अपेक्षा हरेक की 3-3 पुष्टि संग्रह पुष्टि बनती है। अब उसी का जो पुष्टि का अर्थ क्या है, उसका लक्षण क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ विशेष स्पष्ट करने के लिए प्ररूपणा करते हैं 59 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ। देखो, अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यह प्ररूपणा करते हैं, वह जैसे स्पर्धक का लक्षण। स्पर्धक का लक्षण क्या है और पुष्टि में क्या डिफरेंस है, वो बात यहाँ बताने जा रहे। अनंत परमाणु जघन्य विभाग प्रतिच्छेद परिणाम रूप परिणत होकर प्राप्त होते हैं, यानी सबसे जघन्य अनुभाग वाले परमाणु कितने हैं, तो अनंत है, तो उसको हम पहली वर्गणा कहेंगे। उन सबके समुदाय रूप यह एक वर्गणा है। स्पर्धकों में सबसे जघन्य वर्गणा की यहाँ बात बता रहे। पुनः पहले के कर्म परमाणुओं से एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाले अनंत कर्म प्रदेश प्राप्त होते हैं, यह दूसरी वर्गणा है। हमने माना था ना 100 वाले परमाणुओं का ग्रुप है उसको हम पहली वर्गणा कहेंगे, 101 वाले है उसको दूसरी वर्गणा कहेंगे। एक एक से बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। किंतु जघन्य वर्गणा से यह वर्गणा एक वर्गणा विशेष मात्र परमाणुओं से हीन होती है। अविभाग प्रतिच्छेद तो दूसरी वर्गणा में एक अधिक है, परंतु परमाणु का संख्या परमाणुओं के कुछ कम है, तो कुछ कम को हम जो चय कहते हैं उसको यहाँ वर्गणा विशेष कहा। विशेष यानी डिफरेंस, वर्गणाओं में जो डिफरेंस है, तो उससे ये दूसरी वर्गणा उतनी से हीन है। इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छेद रूप से अधिक होकर, यानी एक एक वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता हुआ और कर्म प्रदेश क्रम से हीन होकर, कर्म प्रदेश तो कुछ कम होते हैं और अविभाग प्रतिच्छेद तो एक एक से बढ़ता है। तो कहते अभोव्यों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण आगे की वर्गणाएं प्राप्त होकर जहां अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्तर क्रम वृद्धि का अंत हो जाता है। उत्तर यानी जो क्रमरूप जो वृद्धि थी एक एक से बढ़ती हुई वो वहां से समाप्त हुई। कितने वर्गणा होने पर? अनंत। वो अनंत कितने हैं? तो अभव्यों से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण। अब ये जो क्रमरूप वृद्धि हो रही थी वो यहां तक ही है, इसके बाद एकदम जम करके बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, जो पहले की जगन्य वर्गणा थी उसके दो गुना हो जाएगी। तुम कहेंगे वहां से दूसरा स्पर्धक है। तो एक क्रम से एक एक अविभाग से प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए अनंत वर्गणा होती है। यहां लिखे ना क्रम वृद्धि का अंत हो जाता है ना, वहां तक तो क्रमरूप वृद्धि है। इस कारण उस स्थान में एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाली अन्य वर्गणा नहीं प्राप्त होती, यानी वहां इसे कोई परमाणु नहीं जिसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक हो या दो अधिक हो तीन अधिक हो, ऐसे कोई परमाणु वहां पर है ही नहीं सत्ता में।
अन्य वर्गणा प्राप्त नहीं होती चाहिए,
नहीं प्राप्त होती, एक ही बात है। अतः वहां तक की वर्गणाओं को मिलाकर एक स्पर्धक होता है, यानी जहां तक क्रम से एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई अनंत वर्गणा होती है उनके समूह को एक स्पर्धक कहा। पुनः शेष रहे कर्म प्रदेशों के पुंज में से आदेश रूप जघन्य शक्ति से संयुक्त तथा अनंत सदृश धन वाले परमाणुओं के साथ एक परमाणु को ग्रहण कर अविभाग प्रतिच्छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणा अंतर होकर, इसका अर्थ बताऊंगी मैं, पूर्व के जघन्य स्पर्धक की आदि वर्गणा से दूसरे स्पर्धक की आदि वर्गणा दूनी शक्ति से युक्त उत्पन्न होती है। यहां स्पर्धकों का स्वरूप बता रहे हैं, तो उसमें से उन्होंने वर्गणा से शुरुआत की बताने के लिए, जिसको हम जघन्य वर्गणा कहते हैं। पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा आदि वर्गणा नीचे से शुरुआत करेंगे, तो ये अनंत परमाणु है, उसमें समान धन यानी सदृश धन के कहने सबका अविभाग प्रतिच्छेद एक जैसा है। दूसरी वर्गणा है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद एक ज्यादा है, तीसरे में और एक ज्यादा है, चौथे में और एक ज्यादा है, परंतु विशेषता क्या है, हर एक में परमाणु की संख्या कुछ हीन है, जिसको हम चय कहते हैं। यहाँ वर्गणा विशेष कहा है। तो ऐसे कितने होती है टोटल? तो अभोव्यों से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण, इतनी तो क्रम से वृद्धि रूप वर्गणा पाई जाती है। यहाँ वाक्य क्या लिखा देखो, नीचे से तीन तीन छह, हाँ छठी लाइन, यानी ये क्रमरूप वृद्धि का यहाँ अंत हो जाता है। किसमें वृद्धि हो रही थी? अविभाग प्रतिच्छेदों में, प्रदेशों में तो थोड़ी थोड़ी घट रही थी। इसके बाद इस कारण उस स्थान में एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाली अन्य वर्गणा नहीं प्राप्त होती, यानी इसके ऊपर एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाली कोई वर्गणा नहीं है, दो अधिक वाली ऐसे नहीं है। अतः वहां तक की वर्गणाओं को मिलाकर एक स्पर्धक होता है, तो इतनी वर्गणाओं के समूह को हम एक स्पर्धक कहेंगे। पुनः शेष रहे कर्म प्रदेशों के पुंज में से, ये जो टोटल कर्म प्रदेश के पुंज थे उसमें से हमने अविभाग प्रतिच्छेद वाले ऐसे 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 हमने यहाँ कुछ परमाणु लिए, तो ये एक स्पर्धक हुआ। अब इसमें से, ऐसे तो अनंत स्पर्धक होते, अब इसमें से क्या करना, जो शेष रहे कर्म प्रदेशों के पुंज में से आदेश रूप जघन्य शक्ति से संयुक्त तथा अनंत सदृश धन वाले परमाणुओं के साथ एक परमाणु को ग्रहण कर अविभाग प्रतिच्छेद करने पर, यानी अब ये जो बाकी रहे हैं उसमें से जो जघन्य आदेश जघन्य का सबसे जघन्य तो ये था अविभाग प्रतिच्छेद। ये इनकी भाषा अटपटी है, समझ में आने में मुश्किल है। अब कहते जो बचे हुए में से कौन सा जघन्य रहा है उसकी बात, जो टोटल जघन्य उसको तो वो उसे जघन्य कहेंगे। अब कहते अब इतने सब वर्गणाएं निकालने के बाद अब जो शेष बचे हैं अभी उसमें से जघन्य कौन से अविभाग प्रतिच्छेद वाले हैं, तो हम कहेंगे यहाँ ये जो कोई है ये अविभाग प्रतिच्छेद, इन बिटवीन इतने अविभाग प्रतिच्छेद वाला एक भी परमाणु नहीं है। पहले स्पर्धक संबंधी उतने अनुभाग वाले सारे हमने परमाणु निकाल दिए, उसके एक वर्गणा दूसरी वर्गणा तीसरी वर्गणा ऐसे अनंत वर्गणा हो। अब जो शेष बचे हैं अभी इसमें से हम ढूंढेंगे, अब उसमें से जो मिनिमम अनुभाग वाले हैं, तो जैसे हमने यहाँ 100 अविभाग मान लिया था हमें 120 तक मिले कंटिन्यूस में, अभी यहाँ बीच वाले कोई है नहीं, तो हमने यहाँ देखा तो अभी मिनिमम कितना है तो हमें 200 वाला मिला, इन बिटवीन वाले मिले ही नहीं, इसको आदेश जघन्य का। तो शेष रहे कर्म प्रदेशों में से आदेश वाले जघन्य ने, अभी जो रिमेनिंग में से जो जघन्य है ये फिर पढ़ते हैं। शेष रहे कर्म प्रदेशों के पुंज में से आदेश रूप जघन्य शक्ति से संयुक्त, ये आदेश शब्द है ना, यानी अभी शेष बचे में से जघन्य टोटल जघन्य था उसको तो पहले वर्गणा में ले लिया, उस जघन्य शक्ति से संयुक्त तथा अनंत, वो भी परमाणु कितने तो अनंत है, सदृश धन वाले परमाणुओं के साथ एक परमाणु को ग्रहण कर अविभाग प्रतिच्छेद करने पर, यानी अभी हमने 200 वाले सारे परमाणु ले वो भी अनंत है, उसमें से एक परमाणु को कंसीडर करेंगे क्योंकि सभी सदृश धन वाले हैं ना, सबका अविभाग प्रतिच्छेद समान है, उसमें से एक परमाणु का अविभाग देखने पर कितना है, वो सब जीवों से अनंत गुणा अंतर होकर, ये बीच में अंतर कितना पड़ा सब यहाँ तक तो कंटिन्यूस से अभव्य से अनंत गुणे इतने तो एक एक से वृद्धि होते हमने वर्गणा पाई, बीच में अंतर कितना होता है तो सब जीवों से अनंत गुणा तो अंतर होता है, यानी उतने एक एक से बढ़ते हुए कोई बीच वाली वर्गणाएं नहीं पाई जाती। एक स्पर्धक की वर्गणा से अपर मोस्ट वर्गणा से दूसरी वर्गणा की लोअर मोस्ट जो वर्गणा है उसमें बीच में अंतर कितना चला जाता है तो सब जीवों से अनंत गुण है, यहां लिखा ना सब जीवों से अनंत गुणा अंतर होकर पूर्व के जघन्य स्पर्धक की आदि वर्गणा से दूसरे स्पर्धक की आदि वर्गणा दूनी शक्ति से युक्त उत्पन्न होती है, यानी यहां 100 था वो तो 200 हो गया, क्रम से बढ़ते बीच में, क्रम से बढ़ते तो 100 होने चाहिए थे बीच में, पर 100 तो नहीं हुए 20 ही हुए, बीच में इतना अंतर पड़ गया, 80 वाला अंतर करके वहां 200 वाली कोई नई अविभाग प्रतिच्छेद वाली उत्पन्न होगी, इसको क्या कहेंगे यहाँ से दूसरा स्पर्धक कहेंगे, फिर क्रम से वृद्धि होगी एक एक से वृद्धि 201 202 203 इस तरह से, ये भाषा समझ में आ रही है ना। इस प्रकार इस विधि से, मैंने हर बार ऐसा ही समझना कि एक नया स्पर्धक शुरू हुआ तो उसमें अभव्यों से अनंत गुणे सिद्धों के असंत विभाग प्रमाण वर्गणाए क्रमरूप वृद्धि से होगी, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती है, फिर बीच में अंतर होगा, कितने अविभाग प्रतिच्छेदों का अंतर पड़ेगा, जीव सब जीवों से अनंत गुणा इतना अंतर होकर तीसरा स्पर्धक होगा, परंतु वो जघन्य की कंपेरिजन में वो 3 गुना हो जाएगा, ओरिजिनल में भी अविभाग प्रतिच्छेद कितने होने चाहिए, हाँ लोएस्ट में भी, क्योंकि वो 2 गुना होता है और अंतर बीच में इतना बड़ा पड़ता है, तो कहते इस प्रकार कहाँ तक उत्कृष्ट स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के प्राप्त होने तक होने बराबर करना, यह क्रम जान लेना चाहिए। यहाँ तो स्पर्धकों का स्वरूप बता रहे, अभी हम 60 पेज पर आए। क्या वाक्य पढ़ा हमने, देखो अनंत है, अनंत अनंत है, एक गुणहानि में अनंत है, तो ऐसी अनंत गुणहानियां। वहाँ तो एक एक परमाणु से बढ़ते हुए वो जो वर्गणाएं थी वो बात अलग है, वहाँ परमाणुओं की संख्या दी थी, नंबर ऑफ परमाणु, एक एक से बढ़ते हुए परमाणुओं की बात थी, सिंगल परमाणु, दो परमाणुओं का स्कंद, तीन परमाणुओं का स्कंद, इस तरह से। यहाँ क्या बात हो रही है अपनी, स्पर्धकों की बात हो रही है। अभी ये कर्म बन चुके हैं, वो वर्गणा से इसकी अभी कंपेयर नहीं करना। यहाँ स्पर्धकों की बात है और स्पर्धकों में अभी जो वर्गणाएं हैं उसकी बात चल रही है। वर्गणा किसको कहा, समान अविभाग वाले प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद, उनके समूह को वर्गणा कहा। वैसे वर्गणा शब्द अलग अलग जगह अलग अलग के लिए भी आएंगे। जब योग की शक्ति की बात करेंगे तो समान योग वाले जो आत्मा के प्रदेश है उनको भी वर्गणा करेंगे। वर्गणा ये टर्मिनोलॉजी, अभी यहाँ हम स्पर्धक क्या है उसको समझेंगे। ये कर्म बन चुके हैं और उनमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है, फल देने की शक्ति, वो तो कारमान वर्गणा तो रॉ मटेरियल था। आप इसको कारमान वर्गणा कह रहे हैं, वो बात सही नहीं है। ये कर्म बन चुका है और उसके स्पर्धकों की बात है। एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है अनंत, उससे अनंत गुणा एक स्पर्धक में वर्गणा होती है, ये तो हमने पहले पढ़ा था। और वो जो ना है नाना गुणहानि का प्रमाण, वो भी अनंत गुणा, वो तो शायद बताएंगे अभी हम पढ़ेंगे। देखो हम अभी 60 पेज पढ़े। इस प्रकार लाते समय अनंत स्पर्धकों को लाया ना हमने, पहला जो स्पर्धक, हरेक की आदि वर्गना सोचेंगे तो एक से दो गुना, फिर तीन चार पांच है, ऐसे नहीं दो गुना नहीं होता, दो गुना तीन गुना चार गुना, जितना नंबर का दसवां स्पर्धक है तो उसकी आदि वर्गणा है वो 10 गुना अविभाग प्रतिच्छेद की। समान है, हमने ये वाक्य पढ़ा था, अपूर्व स्पर्धक में भी वर्गणाओं का प्रमाण उतना ही होता है, ये देखी थी ना बात। पूर्व स्पर्धक हो या अपूर्व हो, एक स्पर्धक में वर्गणाओं का प्रमाण समान है। तो कहते जहां जहां अंतर प्राप्त होता है, अंतर कहाँ प्राप्त होता है, मान लेते पहले स्पर्धक की अंत वर्गणा और दूसरे स्पर्धक की आदि वर्गणा, इसमें अंतर है, कितना अंतर है, तो कहते सभी जीवों से अनंत गुना।
प्रतिस्पर्धक में जो अंतर है वो बढ़ता है,
कैसे बने,
क्योंकि वर्गा का प्रमाण समान है और अविभाग प्रतिच्छेद 100 से 200 गया, 200 से 300 गया, अभी वहाँ पे जो 20 वाला जो प्रमाण है वो समान है, तो 200 से 220 तक कम गए तो अंतर बढ़ेगा, तो अंतर भी समान ही
रहेगा। अभी हमने जो लिया है हमारा अंतर कितना है, 120 से 200 और वो 220 से 300, 300, 200, 400 यानी वो तो समान दिखता है ना। अभी यहाँ देखें ये क्या बोलता है, ये तो ये हमारी संदृष्टि है, परंतु यहाँ वो देखिए, देखो वहाँ वहाँ सर जहाँ जहाँ अंतर प्राप्त होता है वहाँ वहाँ अंतर के पूर्व तक स्पर्धक ग्रहण करना चाहिए। ओ यानी उस अंतर को स्पर्धक में नहीं ग्रहण किया, वो अंतर दो स्पर्धकों के बीच में ग्रहण किया। स्पर्धक कहाँ तक हुआ, अंतिम वर्गणा तक, ये बात बताएंगे। अंतर के पूर्व तक स्पर्धक ग्रहण करना चाहिए, यानी हम कैसा कहेंगे, ये जितनी वर्गणाएं दिख रही है उतना एक स्पर्धक है, ये दूसरा स्पर्धक है यहाँ की वर्गणा, फिर अंतर है, फिर तीसरा स्पर्धक है, और हरेक की आधी वर्गणा दो गुणा तीन गुणा इस तरह से होती चली जाए। इसको स्पर्धक अंतर कहेंगे, या वो जितने अभिभाग प्रतिच्छेद छूट गए उसको वहां अंतर कहेंगे। इसलिए इस प्रकार जो अनुभाग का विन्यास विशेष होता है, विन्यास यानी उसकी रचना इस तरह से है ना, अनुभाग की रचना इस प्रकार से पाई जाती है। वह स्पर्धक का लक्षण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। विशेषार्थ, प्रकृत में स्पर्धक के लक्षण पर प्रकाश डालते हुए जो स्पष्टीकरण किया है उसका आशय यह है, पहले ऐसे अनंत परमाणु लो जिनमें से प्रत्येक परमाणु में सबसे जघन्य अभिभाग प्रतिच्छेदों से परिणत सदृश अनुभाग शक्ति पाई जावे, इसका नाम एक वर्गणा, और प्रत्येक परमाणु का नाम वर्ग है। यह सबसे जघन्य शक्ति से युक्त प्रथम वर्गणा है। पुनः जिसमें एक अधिक अभिभाग प्रतिच्छेदों से परिणत प्रत्येक परमाणु हो, ऐसे अनंत परमाणु के समुदाय रूप दूसरी वर्गणा होती है। मात्र इस वर्गणा में पूर्व वर्गणा से एक वर्गणा विशेष मात्र परमाणु हीन पाए जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से अभोग्यों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण वर्गणाएं जिसमें होती है उसे एक स्पर्धक कहते हैं, क्योंकि वहीं पर स्पर्धक भी समाप्त होता है। इसी प्रकार सब जीवों से अनंत गुणा अंतर देकर इसी क्रम से दूसरा स्पर्धक प्राप्त कर लेना चाहिए। मात्र प्रथम स्पर्धक की आदि वर्गणा में जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं उनसे दूसरी स्पर्धक की आदि वर्गणा में दूने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, तथा आगे भी यही क्रम जान लेना चाहिए। यही ने तीन गुने चार गुने, दो गुना को दो गुना नहीं करना है, इन्हें एक दो चार आठ ऐसा नहीं करना है, जघन्य से दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना छह गुना इस क्रम से बढ़ाना। प्रतिस्पर्धक के आदि वर्गणा में जो स्पर्धक का जितना संख्या होगी उसकी जितना उसका क्रमांक होगा उतने गुना अविभाग प्रतिच्छेद एक परमाणु में होते, वो भी आदि वर्गणा के। अब कुष्टि का लक्षण कहने पर, विषय अपना कुष्टि संबंधी चल रहा है परंतु उसका स्वरूप समझ में आवे इसलिए स्पर्धक का स्वरूप पहले बता दिया। कहते अब कृष्टि का लक्षण कहने पर, जघन्य कृष्टि के सदृश धन वाले अनंत परमाणुओं से दूसरी कृष्टि में एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त परमाणु नहीं होते, वर्गणाओं में होते थे, एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होता था, यहां ऐसा नहीं है, किंतु नियम से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति से संयुक्त परमाणु होते। इसी प्रकार दूसरी कृष्टि के सदृश धन वाले सब अविभाग प्रतिच्छेद पुंज से तीसरी कृष्टि में सदृश धन वाले सब अविभाग प्रतिच्छेदों का पुंज नियम से अनंत गुना होकर ही अवस्थित है। हमने ये भी देखा था वो अनंत गुना का प्रमाण भी बढ़ते, गुणकार का प्रमाण भी अनंत गुना होता है प्रतिकृष्ट। इसके आगे भी क्रोध की उत्कृष्ट पुष्टि के प्राप्त होने तक, ये प्रिंटिंग जरा स्पष्ट है कर लेना, आगे आगे इसी प्रकार होकर सब कृष्टियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद की क्रम वृद्धि के बिना, वर्गणाओं में एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद के क्रम से वृद्धि होती थी, अब वैसी वृद्धि नहीं होती, क्रम वृद्धि नहीं होती। जिनमें नियम से अनंत गुणे के क्रम से, वहां एक अधिक की वृद्धि का क्रम था और यहाँ नियम से अनंत गुणे के क्रम से अविभाग प्रतिच्छेदों का सद्भाव पाया जाता है, वह पुष्टि का लक्षण है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। विशेषार्थ, एक स्पर्धक की जितनी वर्गणाएं होती है उनकी प्रत्येक वर्गणा में उत्तरोत्तर एक एक अधिक प्रतिच्छेदों के समुदाय रूप परमाणु पुंज पाया जाता है। जबकि कुष्ठियों की यह स्थिति नहीं है, किंतु लोभ संज्वलन की जो जघन्य कुष्ठि है, क्योंकि उसकी जघन्य कुष्ठि सबसे नीचे वाली है, उसके प्रत्येक परमाणु में जितने विभाग प्रतिच्छेद रूप अनुभाग शक्ति होती है, उससे दूसरी कुष्ठि के प्रत्येक परमाणु में अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद रूप अनुभाग शक्ति होती है। यह क्रम लोभ माया मान और क्रोध के क्रम से क्रोध की उत्कृष्ट कुष्ठि के प्राप्त होने तक समझ लेना चाहिए, यही स्पर्धक और कुष्ठि के लक्षण में अंतर है। अब हम 61 पृष्ठ पर आ गए। अब इस प्रकार इस तीसरी भाष्य गाथा के अर्थ का स्पष्टीकरण करके आगे के विभाषा ग्रंथ को कहते हैं इसका, और फिर पहले तो गाथा समझाएं, अब उसका विषय भी समझाएंगे और भी। विभाषा, अब उक्त भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। लोभस्य जहन्या किट्टी अनुभागे ही थोवा, विदीय किट्टी अनुभागे ही अनंत गुणा, तदीया किट्टी अनुभागे ही अनंत गुणा एवं अनंतर अनंतरेण सौवत्थ अनंत गुणा जाव कोदस्य चरिम किट्टी। लोभ संज्वलन की जघन्य कृष्टि अनुभाग की अपेक्षा सबसे कम है, दूसरी कृष्टि अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी है, तीसरी कृष्टि अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी है। इस प्रकार क्रोध संज्वलन की उत्कृष्ट कृष्टि के प्राप्त होने तक सर्वत्र कृष्टिया अनंतर अनंतर रूप से अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी होती हुई चली गई। ये तो पृष्टि का सब शंका, ऐसा किस कारण से है या प्रश्न चिन्ह चाहिए। समाधान, क्योंकि कृष्टियों के अनुभाग में पूर्वानुपूर्वी से अनंत गुणी वृद्धि को छोड़कर अन्य प्रकार संभव नहीं है। नीचे से ऊपर उसको पूर्वानुपूर्वी कहा यहाँ पर। इस प्रकार यद्यपि कृष्टियों का अनुभाग स्वस्थान में उत्तरोत्तर अनंत गुणी वृद्धि रूप होकर अवस्थित है, तो भी स्पर्धक में रहने वाले अनुभाग को देखते हुए कृष्टिगत अनुभाग अनंत गुणा ही नहीं है। एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि को हम कंपेयर करेंगे तो अनंत गुणा है अंतिम कृष्टि तक, परंतु किसी भी कृष्टि का अनुभाग देखो तो स्पर्धकों के अनंत विभाग गुणा, तो कहते हैं उसको अनंत गुणा ही नहीं है। इस प्रकार इस अर्थ विशेष का ज्ञान कराते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। अपना विषय सब वर्णन पहले आया है, अभी उसी की गाथाएं चल रही। उपकस्या विकिट्टी आदि फदय आदि वगणाएं अनंत भागो, किंतु संयोलन क्रोध की उत्कृष्ट भी कृष्टि प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के अनुभाग की अपेक्षा अनंत वे भाग प्रमाण है, यानी अनंत गुणाहीन है। संज्वलन क्रोध की सबसे उत्कृष्ट अंतिम पुष्टि भी अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के अनंत वे भाग प्रमाण ही होती है, अनुभाग की अपेक्षा लगाई है। यही कारण है कि कृष्टिगत अनुभाग अनंत गुणहानि रूप से परिणत होकर अवस्थित है, ऐसा नियम देखा जाता है, और इसीलिए इसकी कृष्टि संज्ञा भी अर्थानुगत अर्थ अनुगत यानी अर्थ के समान होने वाली सार्थक जाननी चाहिए। यानी वो कृष्टि जो नाम पड़ा है वो नाम के अनुसार कृष्टि यानी वो एकदम कृष्ण जिसको हीन कर दिया अनुभव, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। एवं किट्टीसु थोवो अनुभागो, इस प्रकार कृष्टियों में अनुभाग सबसे अल्प होता है, यह सूत्र सुगम है। किसम कम्मम कदम जम्मा तम्मा किट्टी, यतः संज्वलन कर्म अनुभाग की अपेक्षा कृष किया गया है, अतः उसका नाम कृष्टि है। किसम कदम कृष किया, यतः चारों संज्वलनों का अनुभाग सत्कर्म, अनुभाग सत्कर्म ने अभी उसका अनुभाग जो है वो घटा दिया है, कृष अर्थ सबसे अल्प किया गया है, इसलिए इस अनुभाग की कृष्टि संज्ञा हो गई है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। कृष धातु सूक्ष्म करने रूप अर्थ में आई है, इन उसका अनुभाग और सूक्ष्म सूक्ष्म किया, इस प्रकार इस धातु से व्युत्पादित कृष शब्द का अवलंबन लेकर, ये धातु यानी वर्ब, इंग्लिश में इसको हम वर्ब कहते ना, मराठी में क्रियापद कहेंगे, उसको संस्कृत में धातु कहते, ये धातु यानी मेटल नहीं, यानी जो क्रियापद जो मराठी में आते ना, हम ये जा रहा है तो गमन करना, इसको हम क्या कहेंगे, क्रियापद कहेंगे, उसी को यहाँ धातु कहेंगे। इस प्रकार धातु से व्युत्पादित ने तैयार हुआ कृष शब्द का व्युत्पन्न हुआ अवलंबन लेकर कृष्टि शब्द निष्पन्न किया गया। एदम लक्षण, यह कृष्टि का लक्षण है, यह अनंतर पूर्व कहा गया कृष्टियों का लक्षण है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार प्रथम मूल गाथा संबंधी तीन भाष्य गाथाओं के अर्थों की विभाषा समाप्त हुई। पहली मूल गाथा थी उसमें कितनी कृष्टि बनती है वगैरह वगैरह प्रश्न पूछा था, और लास्ट में पूछा था कृष्टि का लक्षण क्या, ऐसे उसमें जो चार पद थे तो उसके लिए तीन उसकी भाषा गाथा की थी और उसकी विभाषा भी। अब दो नंबर की मूल गाथा, ऐसे मूल गाथा 11 बताने वाले, ये दो नंबर की मूल गाथा बताने वाले अभी। एक तो विधीय मूल गाथा, इससे आगे दूसरी मूल गाथा की विभाषा की जाती है। प्रथम मूल गाथा की विभाषा समाप्त होने पर तदनंतर दूसरी मूल गाथा की विभाषा करनी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ गाथा बता रहे ऊपर, कदिसु च अनुभागेषु च खेदिसु वा कीर्तियासु का कीर्ती सौ वा सुवाठिधिषु च आहो सौ वा सुपत्ययम्। कितने अनुभागों में और कितनी स्थितियों में कौन कृष्टि अवस्थित है, क्या सब स्थितियों में सब कृष्टियां संभव है, या सब स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति पर एक एक कृष्टि संभव है, यानी निषेकों का और कृष्टियों का आपस में क्या मेल है ये पूछ रहे, एक एक निषेक में एक एक कृष्टि है क्या, कैसे है ये पूछ रहे। शंका, यह दूसरी मूल गाथा किस लिए अवतीर्ण हुई है, तो उसका समाधान कहते हैं। स्थितियों में और अनुभागों में, पृष्टियों के अवस्थान विशेष का अनुसंधान करने के लिए यह गाथा उत्तीर्ण हुई है। अनुसंधान ने आपस में उसका क्या संबंध है, रिलेशन है, क्या नीचे के निषेकों में बहुत अनुभाग कम है, ऊपर ज्यादा है, ऐसा है क्या, इस तरह से यहाँ पूछ रहे। वह जैसे कदिसु अनुभाग ऐसु ऐसा कहने पर अनुभाग के कितने अविभाग प्रतिच्छेदों में कौन पृष्टि अवस्थित है, क्या संख्यात अविभाग प्रतिच्छेदों में या असंख्यात अविभाग प्रतिच्छेदों में या अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों में, इस प्रकार यह पूछा की गई है। और यह पूछा संग्रह पृष्ठियों में और उनके अवयव पृष्ठियों में योजित कर लेनी चाहिए, यानी कितने अनुभाग में है, ये तो उसके अनुभाग संबंधी प्रश्न पूछा। थिदिसुवा कहती ऐसे का किट्टी ऐसा कहने पर कितनी स्थितियों में कौन पृष्ठि अवस्थित है, क्या एक स्थिति में, दो स्थितियों में, तीन स्थितियों में, इस प्रकार जाकर क्या संख्या स्थितियों में या असंख्या स्थितियों में, यह पूछा की गई है। स्थिति यानी निषेक, अनंत क्यों नहीं कहे अश्विन भाई ने? हाँ, निषेकों का असंख्या ही होता है। यहाँ कितना होगा? अंतकोड़ा कोड़ी कहाँ पर आ गया?
निषेकों
का, परंतु निषेकों का वर्षों में बताओ।
यहाँ पे संख्या
मोनिय का संजोलन का सत्व कितना बाकी है? 8 वर्षों में भी हाँ, उसको असंख्यात निषेक कहेंगे हम। हाँ, ये क्या है, प्रश्न पूछा गया है कि निषेकों से और ये स्पर्धकों का क्या, क्योंकि हमें ऐसा लगता है नीचे के निषेक ने बंद, ऐसा नहीं, वो वर्गणा में अलग रचना है और निषेकों में अलग है, वो बताएंगे अभी।
पुष्टियों का प्रमाण अंतर्भूत प्रमाण ही होगा ना, जो उत्पन्न हुई है अंतर्भूत प्रमाण ही उत्पन्न।
पृष्टि अंतर्मूल प्रमाण का अर्थ क्या है? पृष्टि का काल अंतर्मूर्त है, कितने काल तक लगातार पृष्टि का किया कार्य, वो अंतर्मूर्त है। यानी क्या आपका प्रश्न ही नहीं, मुझे ख्याल
नहीं।
पृष्टि बनती कितनी होती? अनंत बनती है। आपका आपका उत्तर आने वाला है। यहाँ पर भी संग्रह पृष्टि और उनकी अवयव पृष्टियों में से प्रत्येक के साथ इस पृष्ठा का संबंध कर लेना चाहिए, यानी ये जो प्रश्न उठे यहाँ पर, ये संग्रह पृष्टियों के बारे में और अवयव पृष्टियों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। ये तो भी पृष्ठा हुई है, पृष्ठा इसीलिए की है कि हमारे मन में जो कुछ कंफ्यूजन हो वो निकल जाए, निश्चिंत हो जाए। इस प्रकार इस सूत्र वचन द्वारा स्थिति विषय पृच्छा के निर्दिष्ट किए जाने पर फिर भी विशेष कथन करने के लिए गाथा का उत्तरार्ध अवतीर्ण हुआ है। के सव्वा सव्वा ठीदी सूच संज्वलनों की यथासंभव पृष्टि संबंधी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति संभव होने पर उनमें से उनकी सभी अवयव स्थितियों में भेद किए बिना क्या सब पृष्ठियों में संभव है या सब स्थितियों में सब पृष्ठियां संभव नहीं है, किंतु एक एक स्थिति में एक एक ही होकर पृष्ठी रहती है, यानी स्वरूप क्या है, क्या एक एक निषेक में होती रहती है, क्योंकि अलग अलग असंकीर्ण रूप से ही उन स्थितियों में उन पृष्ठियों का अवस्थान संभव है। असंकीर्ण संकीर्ण ने इकट्ठा होगा असंकीर्ण। इस प्रकार यह गाथा पृच्छा सूत्र होकर भाष्य गाथा से प्रतिबद्ध शेष समस्त निर्णय की प्ररूपणा के द्वारा बीज पद रूप से अवस्थित जाननी चाहिए। ये तो ओरिजिनल पद है उसका, और उसके बाद इसके आधार से भाष्य गाथा उत्पन्न होगी और उसकी विभाषा की जाएगी। और अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए चुन्नी सूत्र का उससे संबंध रखने वाली दो भाष्य गाथाओं के अस्तित्व का कथन करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। एक दिश से वे भाष्य गाओ, इस मूल गाथा की दो भाष्य गाथाएं हैं। यह सूत्र सुगम है। मूल गाहा पुरी मध्य एक का भाष गाहा, मूल गाथा के पूर्वार्ध से संबंध रखने वाली एक भाष्य गाथा है। दो में से एक जो है वो पूर्वार्ध संबंधी है। तिससे समुत्कीर्तना, अब उसकी समुत्कीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है। अब ये भाष्य गाथा बता रहे। किट्टी चट्ठी दिवि शेषेषु असंख्येज्ये सुनियम साहोदि नियमानुभागेषु च होदिहु किट्टी अनन्तेषु। असंख्यात स्थिति विशेषों में सभी कृष्टियां नियम से होती हैं। उसी प्रकार अनंत अनुभागों में प्रत्येक संग्रह कृष्टि और अवय कृष्टि नियम से होती है। अब इस बात को बताएंगे। अब मूल गाथा के पूर्वार्ध की विभाषा करने के लिए अवतीर्ण हुई इस प्रथम गाथा के अर्थ का कथन करेंगे। वह जैसे कि टीच प्रत्येक कृष्टि असंख्येज्यसु यानी असंख्यात संख्या से युक्त, ठिदि विशेषेषु यानी स्थिति भेदों में नियमसा नियम से होती है। चारों संयुलनों की द्वितीय स्थिति संख्या तावली प्रमाण होती है। आठ वर्ष वगैरह जो कुछ कहा था ना आवली में, उसको कितना कहेंगे? संख्या तावली। उनमें से एक एक स्थिति में अपनी अपनी सभी संग्रह कृष्टियां और उनकी अवयव कृष्टियां संभव है, इसमें निषेध नहीं है। एक एक स्थिति में प्रत्येक स्थिति में सभी अंतर कृष्टियां होती है और सभी अवयव कृष्टियां होती है। इस कारण सभी कृष्टियां सभी स्थिति विशेषों में नियम से अवस्थित जाननी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ पर वेदी जाने वाली संग्रह पुष्टि की प्रथम स्थिति भी सभी स्थितियों में संभव है। प्रथम स्थिति के प्रथम पुष्टि ऊपर पड़ो। तेन कारण सव्वा किट्टी सव्वेषु ठिदि विशेषु नियमा समवट्ठिदा दठवाति उत्तम होई। एत वैविज्यमान संग किट्टी है कोणम ठिदि एवी सव्वासु ठिदिषु संभवो एदेनेन सुत्तावयवेन संगहिदोत्ति वट्टव। वैविज्यमान संग किट्टी है पदम ठिदि एवी। इस मुझे पढ़ने दो। जे वेदी जाने वाली संग्रह कृष्टि की प्रथम स्थिति संग्रह किट्टी ये पढ़म ठिदी ये भी प्रथम स्थिति में भी सव्वासु ठिदिषु संभव। वेदी जाने वाली संग्रह पुष्टि की प्रथम स्थिति भी सभी स्थितियों में संभव है। यानी उसका जब संग्रह पुष्टि का उदय होगा, पहले संग्रह पुष्टि का उदय होगा तो वो भी सभी में पाई जाएगी। जब उदय होगा तब की बात है। अभी तो सृष्टि कहाँ बनी है, तो द्वितीय स्थिति में बनती है। देखो यहाँ नीचे पड़ी है, प्रथम स्थिति कहते हैं वेदी जमान संग किट्टी है पढ़म ठिदी है भी चौवास ठिदी से संभव एदे ने वो सत्ता वय ने संग इधरती दट्ठव वो तो बाद की बात करा रहे।
तो प्रथम स्थिति में तो पुष्टि बनेगी या नहीं बनेगी वो या नहीं,
यहाँ ये बात होती है जब उसका उदय होगा पुष्टि का, तो जिस पुष्टि का उदय हो रहा है, पुष्टि का उदय करता है उतने अनुभाग वाले परमाणु, तो क्या केवल उदय में होंगे? तो कहते वो जो उदय रूप जो अनुभाग है वो सभी निषेकों में पाया जाएगा। जब संग्रह पुष्टि का उदय होगा, हाँ क्योंकि संग्रह पुष्टि का उदय कब होगा, वो जब प्रहित स्थिति में आएगी तब। तो क्या ऐसा है कि उसके ऊपर के सारे जो पुष्टि जो प्रथम संग्रह रूप पुष्टि है वो सभी नीचे आ गई और उसका उदय चल रहा है? तो कहते ऐसा नहीं, वो प्रथम पुष्टि संबंधी अनुभाग है वो भी सर्वत्र पाया जाएगा, इतनी बात बता रहे। हाँ वो इधर काल की बात यहाँ उठाई, जब पुष्टि का उदय होगा, अभी तो द्वितीय स्थिति में पुष्टि करने का कार्य चल रहा है, एक समय में अनंत पुष्टि होती है, तो ये जो अनंत वेरिएशंस है वो प्रत्येक निषेक में पाए जाएंगे। अब कहते जब उसका उदय होगा, तो उदय पहले संग्रह पुष्टि का उदय हो रहा है, तो उदय हो रहा है तो क्या मात्र वो पहले स्थिति में ही होगा? तो कहते ऐसा नहीं, सभी जगह होगा। हाँ यानी जो जिसका उदय चल रहा है वो सभी निषेकों में होगा, विशेषार्थ जिस समय जिस संज्वलन कषाय का उदय होता है उस समय उसकी प्रथम स्थिति होकर उसका उदय होता है, ये तो जनरल रूल है, क्योंकि क्रोध के उदय से ही चलता है तो क्रोध की प्रथम स्थिति है, अन्य काल में वह मात्र द्वितीय स्थिति में ही अवस्थित रहता है। शेष कथन सुगम है। नियमा अनुभागे सूय ऐसा कहने पर एक एक संग्रह पृष्टि और उनकी अवयव पृष्टि अनुभाग के अनंत संख्या से युक्त अविभाग प्रतिच्छेदों में रहती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यानी पृष्टि का अविभाग प्रतिच्छेद भी कितना है, तो अनंत है। जगन्य जगन्य इतना अनंत गुणाहीन होकर भी अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, तो कहते अनंत है, और उसके वेरिएशंस भी अनंत है, क्योंकि सदृश धन वाले परमाणु समूह से निष्पन्न हुई एक एक पृष्टि के प्रत्येक परमाणु के प्रति अनंत अविभाग प्रतिच्छेद उपलब्ध होते हैं। यानी अनुभाग प्रतिच्छेद घटते घटते क्या संख्यात असंख्यात हो जाते हैं, तो कहीं नहीं अनंत ही रहे। इसलिए जघन्य भी पृष्टि अविभाग प्रतिच्छेदों की गणना को देखते हुए अनंत संख्या से युक्त अनुभाग विशेष रूप से अवस्थित है। यानी कितनी भी पृष्टि कितनी बार होए और कितनी भी नीचे की कृषि ले तो भी उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इसी प्रकार शेष कृष्टियों के विषय में भी जानना चाहिए। इस प्रकार यह गाथा के उत्तरार्ध का समुच्चय रूप अर्थ है। अब इस गाथा के इस प्रकार के अर्थ की विभाषा करते हुए चूर्णी सूत्रकार आगे के विभाषा ग्रंथ को कहते हैं। ये पूर्वार्ध को बताते बताते उत्तरार्ध कहाँ से आया? नियमा अनुभाग अच्छा वो नीचे का ले लिया उन्होंने, पहले पूर्वार्ध की बात बताई थी, फिर 64 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी बात है, दूसरी लाइन नियमा अनुभागे भागे सूर्य वहां से लेकर उन्होंने दूसरा इन्हें उत्तरार्ध बताया है। अब इसको बताएंगे विभाषा। अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है। क्रोधस्य परम संगह चाहिए, सग हुआ है संगह, क्रोधस्य परम संगह किट्टिम वेदेन्तस्य। अभी प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन करने वाला, पहले करने वाला था तो नीचे से पहला दूसरा तीसरा नंबर दिया था, जब वेदने की बात आती है तो ऊपर से अधिक अनुभाग वाले का वेदन पहले होता है, तब उसको प्रथम संग्रह पुष्टि कहेंगे। तो कोदस्य प्रथम संग्रह किट्टी वेदेन्तस्य, तीसरे संग्रह किट्टी है एक एक का किट्टी, विदय ठिदिशु सौवासु परम ठिदिशु च उदय वज्जासु, एक एक का किट्टी सौवासु ठिदिशु। ये वेदने वाले की बात, करने वाले में तो द्वितीय स्थिति में हुई थी, जब वेदना का प्रसंग आता है तो उसके द्वितीय स्थिति में से ये परमाणु पहले संग्रह पहली स्थिति में आते हैं, वहां उसकी रचना हो जाती है। तो ये पहले संग्रह पुष्टि के परमाणु यानी अनुभव वाले कहाँ कहाँ है, पहले स्थिति में भी है द्वितीय स्थिति में भी है। ये अभी जो उन्होंने बात बताई थी ना उसी की विभाषा चल रही है, नीचे हिंदी में हम पढ़ेंगे। क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पृष्टि का वेदन करने वाले जीव के उस संग्रह पृष्टि की एक एक अवयव पृष्टि यानी सभी सभी प्रकार सभी पृष्टिया सब द्वितीय स्थितियों में यानी द्वितीय स्थिति के सभी निषेकों में और उदय रहित प्रथम स्थितियों में यानी प्रथम स्थिति जो बनी है उसमें उदय रूप तो एक ही निषेक है नीचे का और प्रथम स्थिति तो अंतर्मूर्त वाली बनी है
सभी
तो सभी निषेकों में इस प्रकार एक एक अवयव पृष्टि सब स्थितियों में अवस्थित रहती है। पृष्टि कहाँ कहाँ है तो कहते जब करने वाले की तो द्वितीय स्थिति में थी परंतु जब उसका वेदन करने का प्रसंग आता है तो ये द्वितीय स्थिति प्रथम स्थिति सब जगह उसका विद्यमान था। प्रत्येक निषेक में सभी पृष्टियां होती है। अब प्रथम संग्रह में वेदने वाले की बात अलग क्यों ली, जिस कषाय का उदय नहीं है उसकी प्रथम स्थिति है ही नहीं है तो उनके सारी पृष्टि कहाँ पड़ी है द्वितीय स्थिति में, और जिनका उदय चल रहा है उसके प्रथम स्थिति में भी और द्वितीय स्थिति में। यहाँ तक ख्याल में ये बात क्रोध की प्रथम संग्रह पृष्टि आई नीचे
पृष्टि वेदन काल तभी जो निषेक जो नीचे आ गए पृष्टि तो क्यों पड़े क्योंकि प्रति निषेक सभी संग्रह पृष्टि
हाँ प्रति निषेक सभी पड़ते
बराबर है
हाँ।
अभी नीचे आया क्रोध का जब उदय हुआ तभी तीनों पृष्टिया नीचे आई है चंद्र पृष्टि नीचे आई है एक ही संग्रह नहीं प्रति निषेक तो सभी पृष्टिया होती है
हाँ हाँ। क्या लिखा प्रथम संग्रह पृष्टि का वेदन करने वाले जीव के उस संग्रह पृष्टि की सभी पृष्टिया द्वितीय
द्वितीय सभी पृष्टिया ने खाली प्रथम संग्रह पृष्टि जिसमें अनुभव मैक्सिमम था वही संग्रह पृष्टि नीचे आई है कि
तो बराबर निषेक तो निषेक की अपेक्षा तो आ गए परंतु उसमें किस किस कृष्टि रूप से आएंगे नीचे हाँ अभी हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे आपका प्रश्न मेरे ख्याल में आ गया। देखो यहाँ क्या कहते हैं हिंदी फिर पढ़ते हैं क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पृष्टि का वेदन करने वाले जीव के। अब जैसे हमने देखा था द्वितीय स्थिति में तो क्रोध मान माया लोभ सभी पड़े परंतु प्रत्येक के अपने अपने निषेक अलग है मतलब वो तो नीचे नहीं आ रहे
प्रत्येक
प्रत्येक निषेक में सभी है 12 के 12 है अच्छा क्रोध की अलग करो आप, परंतु जैसे क्रोध का उदय है, जैसे क्रोध का उदय है तब मान माया और लोभ नहीं आ रहे हैं नीचे, वैसे जब प्रथम संग्रह कृष्टि का उदय है तो पहले द्वितीय और तृतीय संग्रह कृष्टि नीचे नहीं आ रहे। अभी वो उस रूप होकर उदय में नीचे आएगी या वो उधर ही रहेगी हम देखेंगे अभी। आप फिर हिंदी पढ़ रहे हूँ। क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन करने वाले जीव के उस संग्रह कृष्टि की एक एक अवयव कृष्टि सब द्वितीय स्थितियों में और उदय रहित प्रथम स्थितियों में इस प्रकार एक एक अवयव कृष्टि सब कृष्टियों में अवस्थित रहती है। अभी सूत्र का अर्थ कहते हैं, हम पूरा पढ़ेंगे। हम वह जैसे क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदन करने वाले जीव के उस अवस्था में क्रोध संज्वलन की प्रथम और द्वितीय स्थिति के भेद से दो स्थितियां होती है। उनमें से सर्वप्रथम द्वितीय स्थिति की सब अवस्थित द्वितीय स्थिति की सब अवयव स्थितियों में जब अवयव स्थिति कही तो सभी निषेकों में उस विद्यमान क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पृष्टि एक एक अवयव पृष्टि अविशेष रूप से दिखाई देती है, क्योंकि उन स्थितियों में उनके अवस्थान का निषेध नहीं है। ये तो बात है, क्योंकि वहीं पर पृष्टि करने का कार्य हुआ था तो सभी निषेकों में प्रथम संग्रह कृष्टि जैसे अनुभाग वाले परमाणु सब जगह पाई जाएगी, यानी ये सभी कृष्टि सर्वत्र पाई जाएगी। प्रथम देखो, ये प्रथम शब्द स्थिति के लिए भी आ रहा है और प्रथम शब्द प्रथम संग्रह के लिए भी आया है, तो इसलिए कंफ्यूजन होने की यहाँ संभावना है। कितना अनुभाग है उसके लिए हम कहेंगे प्रथम संग्रह कृष्टि। अब ऐसा अनुभाग कहाँ पड़ा है, अंतर के नीचे पहले स्थिति में है कि ऊपर द्वितीय स्थिति में है, तो कहते सर्वत्र है। अब उसी को समझा रहे हैं, तो सब जगह उसका अवस्थान पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है, परंतु प्रथम स्थिति की उदय रहित सब स्थितियों में उस संग्रह पृष्टि की एक एक अवयव पृष्टि उपलब्ध होती है। यहाँ पर एक एक का किट्टी ऐसा कहने पर क्रोध संज्वलन की जघन्य अवयव पृष्टि इन विवक्षित स्थितियों में पाई जाती है। इसी प्रकार दूसरी अवयव पृष्टि तीसरी अवयव पृष्टि से लेकर प्रथम संग्रह पृष्टि की अंतिम अवयव पृष्टि तक जानना चाहिए। यानी प्रथम संग्रह पृष्टि में भी हमने कितनी अंतर पृष्टियां देखी थी, जिसको अवयव पृष्टि कहते, तो अनंत। तो इतने सारे अनुभाग के वेरिएशन है, वे सभी प्रथम स्थिति के सभी निषेकों में पाए जाएंगे, ये बता रहे। उदय रूप इसलिए छोड़ा है, उदय रहित वाले लिए ना, क्योंकि जब उदय होता है तो सभी कृष्टियों का नहीं होता है। कल हमने देखा था नीचे के असंख्यात विभाग ऊपर के असंख्यात विभाग कृष्टियों को छोड़कर बीच वाले का उदय होता है, इसलिए उदय रहित कृष्टियों की बात की। तो उदय रहित पृष्टियों में सभी अनुभाग पड़े हैं। उदय रहित है ना, उदय के समय को छोड़कर ऊपर के। उदय के समय में क्या होता है वो तो यहाँ शायद ये बता चुके थे, अभी गाथाओं में फिर दोबारा बताएंगे। अभी प्रथम संग्रह पृष्टि की बात है, प्रश्न अपना प्रथम संग्रह पृष्टि के परमाणु कहाँ पर है, अंतर के नीचे है के ऊपर है, तो कहते दोनों जगह। इतनी बात हो गई ना बेटा। तो ये सब कृष्टियां अलग अलग उन स्थितियों में उपलब्ध होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। उपलब्ध होती है ना, पाई जाती है। अब उदय स्थिति का यहाँ पर किस लिए निषेध किया है अथवा उसमें क्या विशेष संभव है, ऐसी आशंका होने पर निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। पुष्टि करने के कार्य काल में तो सभी निषेकों में सभी होती है, वो तो बता चुके ऊपर द्वितीय में, जब उसके संग्रह पुष्टि का वेदन करने का काल आता है, पुष्टि वेदक काल, तो सबसे पहले प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन चलेगा, यानी क्रोध में से मैक्सिमम अनुभव वाले का वेदन पहले चलेगा, उसका उदय पहले होगा। तो क्या उसका उदय चल रहा है प्रथम संग्रह पुष्टि का, उसका वेदन करने वाला जीव है, तो उसके जो इतनी सारी अनंत पुष्टि बनी प्रथम संग्रह पुष्टि में, अंतर पुष्टि अनंत बनी, यानी इतने अनंत वेरिएशन हुए अनुभव के, तो वो कहाँ पाए जाएंगे? द्वितीय स्थिति में होंगे क्या? तो कहते हाँ। कहाँ होंगे? सभी निषेकों में। प्रथम स्थिति में होंगे हाँ, एक उदय का निषेक के बाद में करेंगे, उसकी विशेषता है, इसलिए बाकी प्रथम स्थिति में भी सर्वत्र होगा, क्योंकि द्वितीय स्थिति में जो पुष्टि करने का कार्य हुआ था उसमें से ही प्रथम संग्रह पुष्टि के परमाणु पहले नीचे आ गए और उसकी रचना हुई थी, तो सर्वत्र वो पुष्टि पड़ गई। अब ये उदय रूप निषेक में क्या पोजीशन है वो माँ कभी बताएंगे। उदयक्षि दिए पुनः वेदिज्य मानियाए संग किट्टिये जाओ किट्टियो तासिम असंख्य भागा, किंतु वेद्यमान संग्रह पुष्टि की जितनी अवयव पुष्टियां हैं उनका असंख्यात बहुभाग उदय स्थिति में पाया जाता है। उदय रूप होकर जब, यानी उदय हो रहा है ऐसा कहेंगे, ऊपर जो है उदय के समय से ऊपर की ये स्थिति और ये उदय रूप स्थिति, ये उदय निषेक और ये उदय के ऊपर का निषेक, इसमें तो अनंत पुष्टि बनी है, क्योंकि हरेक में जघन्य से हम ऐसा उल्टा रखेंगे, जघन्य से उत्कृष्ट तक सभी पुष्टियां वो प्रथम संग्रह पुष्टि के यहाँ आ गई, यानी यहाँ के जो अनंत परमाणु है उसमें अनुभागों के अनंत वेरिएशंस है जिसको हम पुष्टि कह रहे थे। परंतु जब उदय रूप होने का प्रसंग आया है तो उदय में जो अत्यंत, यानी उसके जो असंख्यात भाग करेंगे हम, अनंत का असंख्यात भाग करेंगे, तो ये जघन्य की ओर की और उत्कृष्ट की ओर से असंख्यात विभाग प्रमाण छोड़ दिया, तो बीच में असंख्यात बहुभाग जो पुष्टियों का प्रमाण है उस रूप से उदय चलेगा। यानी ये अधिक अनुभाग वाली कम अनुभाग वाली हो जाएगी या कम वाली अधिक हो जाएगी, ऐसा होकर सभी मध्यम रूप से उदय में आएंगे। यानी उदय रूप में अनुभाग कैसा है तो इसका असंख्यात में बहुभाग प्रमाण बीच वाला, क्योंकि ये इस रूप टर्न होकर उदय में आई ना, तो यहाँ कृष्टियों का प्रमाण कितना है, तो यहाँ जितना था अनंत उसका असंख्यात बहुभाग है, इतनी कृष्टि वहां पर उपलब्ध होती है, यानी उस रूप से उसका उदय होता, उस अनुभाग रूप से उदय होता।
ये कहना बराबर है कि प्रति समय दूसरी का अनुभव बुरी बढ़ती जाती है, अभी तो जिसपे का अनुभव कम हो गया है वो भी बढ़कर उदय में आएगा, ऐसे कह सकता है कि एवरेज
बीच वाले कुष्ठी जैसा अनुभव का उदय होगा। और वो एक एक समय में जितना है उससे दूसरे समय में जो उदय रूप अनुभव है वो और हीन की तरफ चलता जाएगा। देखो यह हमने हिंदी अर्थ पढ़ा, फिर पढ़ती हूँ। किंतु वेद्यमान, यानी जो वेदी जा रही है उदय रूप, वेद्यमान का अर्थ क्या है? उदय रूप संग्रह पृष्टि की जितनी अवयव पृष्टियां हैं उनका असंख्यात बहुभाग उदय स्थिति में पाया जाता है। बीच वाला असंख्यात बहुभाग लेना, इसमें से उत्कृष्ट का भी उदय नहीं, उसमें से जघन्य का भी नहीं, बीच रूप होकर वो उदय में आता है, इसलिए असंख्यात बहुभाग कहेंगे। विवक्षित संग्रह पृष्टि के, विवक्षित इसलिए क्योंकि ये रूल बना नहीं, नियम रूल, जिसका उदय चल रहा है उसके बाद चलेगा, तो विवक्षित संग्रह पृष्टि के अधस्तन और उपरिम, अधस्तन यानी जघन्य की ओर, उपरिम यानी उसमें से उत्कृष्ट की ओर, असंख्यात वे भाग प्रमाण अवयव पृष्टियों को छोड़कर, यानी उतने अनुभाग वाले परमाणु को छोड़, परमाणु का तो उदय होगा, परमाणु तो अभी खिर रहे हैं, उस रूप से अनुभाग का उदय नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़कर मध्य की जो असंख्यात बहुभाग प्रमाण अवयव अवयव हुए, अवयव दूसरे य का वो करना। तो मध्य की जो असंख्यात भूभाग प्रमाण अवयव पुष्टिया है उस रूप से ही उदय रूप अनुभाग परिणत होता है, ये ख्याल में है ना, यानी अनुभाग परिणत होकर उदय में आता है, जिसे हमने मति ज्ञानावरण में देखा था। दूसरे निषेक में तो सर्वगाती देशगाती सब पड़े हैं, जब उदय आता है मति ज्ञानावरण का तो देशघाती रूप होकर उदय आता है, सत्ता में तो सर्वत्र पड़ा रहता है। ऐसे यहाँ पर ये तो कंपैरिजन जस्ट बताने के लिए, यहाँ पर इतने अनंत वेरिएशंस है, तो वो बीच वाले असंख्यात बहुभाग प्रमाण अनुभाग टर्न होकर उदय में आता है, ना अति जघन्य होगा ना अति उत्कृष्ट होगा उसमें से। इस कारण विद्यमान संग्रह पृष्टि की अवयव पृष्टियों का असंख्यात बहुभाग उदय स्थिति में संभव है, यह बात इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट की गई है। विशेषा तात्पर्य है, क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि का उदय होने पर न तो असंख्यात वे भाग प्रमाण अधस्तन अवयव पृष्ठिया अपने स्वरूप से उदय को प्राप्त होती, अपने स्वरूप से लिखा ना, और न ही असंख्यात वे भाग प्रमाण उपरिम अवयव पृष्ठिया अपने स्वरूप से उदय को प्राप्त होती, किंतु मध्य के असंख्यात बहुभाग प्रमाण अवयव पृष्ठिया ही उदय रूप से परिणत होती है। इसलिए पूर्व सूत्र में उदय स्थिति को छोड़कर यह वचन कहा है शेष कथन सुगम, वहां पूछा था प्रथम संग्रह पुष्टि का वेदन करने वाले जीव के, प्रथम संग्रह पुष्टि की जो अनंत अवयव पृष्ठिया है वो कहाँ पड़ी है, तो द्वितीय स्थिति में सभी निषेकों में, और प्रथम स्थिति में उदय को छोड़कर सभी निषेकों में। उदय को क्यों छोड़ा, क्योंकि उसके बीच में असंख्यात बहुभाग रूप पुष्टि रूप से परिणत होकर उदय में आएगा, इसलिए उदय रूप नहीं है कहीं, वो परमाणु तो पड़े वहां पर। अब अवेद्यमान शेष 11 संग्रह पुष्टियों का, ये आपका प्रश्न था ना, ये थोड़ा इंतजार करेंगे तो सब उत्तर आने वाले नहीं, कल ही बात आई थी, एक ही प्रथम ही संग्रह पुष्टि के परमाणु नीचे है। अभी देखो ये बताएंगे, अवेद्यमान शेष 11 संग्रह पुष्टियों का प्रथम स्थिति के साथ संबंध न होने से, स्पष्ट लिखा ना, यानी वो तो द्वितीय स्थिति में बनी है वही पर पड़ी है, क्योंकि जो बनी ही थी सभी संग्रह पुष्टियां सभी अवयव पुष्टियां तो द्वितीय स्थिति में बनी, जब उसका उदय होने का समय आया है संग्रह पुष्टि का तब मात्र अभी क्रोध की बात है, क्रोध के प्रथम संग्रह पुष्टि के परमाणु नीचे आए हैं और वहाँ निषेक पहली स्थिति में निषेक रचना, प्रथम संग्रह पुष्टि रूप जो जो हुई थी वही नीचे आ गई, अपन सभी निषेकों में से तो नहीं आई है नीचे, जिसका नंबर नीचे आ गया ये द्वितीय निषेक, अभी हम निषेक की बात करते हैं, ये द्वितीय स्थिति है और ये प्रथम स्थिति में अभी ये पूर्व का आवली शेष रहा, अब तक यहाँ संग्रह पुष्टि कुछ थी नहीं, सब संग्रह पुष्टि वगैरह बनी कहाँ ऊपर, अब यहाँ नई निषेक रचना हो जाएगी, प्रथम स्थिति यानी वो नए परमाणु नीचे आएंगे तो वही परमाणु आकर्षित हो गए जो प्रथम संग्रह पुष्टि रूप से है, एक एक निषेक नीचे नहीं आ रहे जैसे हम कहेंगे, पहली स्थिति अपकर्षण होकर बन रही है, तो अपकर्षण उन्हीं परमाणुओं का होगा जो प्रथम संग्रह पुष्टि रूप से है, तो वो द्वितीय स्थिति के सारे प्रथम संग्रह पुष्टि रूप जो परमाणु अनुभव वाले वो सबके सब नीचे नहीं आते, उसमें से कुछ पहले समय में वगैरह आते रहते, वो तो दूसरे समय वगैरह आते रहेंगे, तो ये उसकी प्रथम संग्रह पुष्टि वालों की इस तरह से ये सॉरी तो गुण श्रेणी रूप से रचना होती है, यहाँ रचना हो जाएगी, कौन से परमाणु आएंगे सभी निषेकों में से, प्रथम संग्रह पुष्टि जिसका अनुभाग है ऐसे परमाणु नीचे आएंगे और उसके यहाँ प्रथम स्थिति बनेगी। तो प्रथम संग्रह पुष्टि वाले परमाणु द्वितीय स्थिति में भी है, अभी पढ़ी ना हमने, पहले स्थिति में भी अभी अभी उसका प्रश्न उसका प्रश्न अभी मत उठा, अभी इसको समझो पहले। इसमें से प्रथम संग्रह पुष्टि वाले परमाणु ही नीचे आ गए हैं, ख्याल में आई बात यहाँ पर। क्योंकि अन्य 11 का क्या होता है उसको पहले सोचेंगे। अब अवेद्यमान शेष 11 संग्रह पुष्टियों का प्रथम स्थिति के साथ संबंध न होने से उनकी एक एक अवयव पुष्टि द्वितीय स्थिति की ही सर्व स्थितियों में जानना चाहिए। प्रथम स्थिति में नहीं, स्पष्ट लिखा ना? इस प्रकार इस अर्थ विशेष का ज्ञान कराते हुए आगे के सूत्र को ये सूत्र में ही बात बताई। शेषाणम अवेदिज्यमाणिगाणम संग्रह किट्टीनम एक एक का किट्टी सव्वासु विधेय ठिदीसु पड़ोम ठिदीसु नत्थी। शेष अवेद्यमान 11 संग्रह पुष्टियों की एक एक अवय पुष्टि द्वितीय स्थिति की सब अवान्तर स्थितियों में पाई जाती है, किंतु प्रथम स्थिति की अवान्तर स्थितियों में नहीं पाई जाती। यह सूत्रगत अर्थ विशेषार्थ। क्रोध संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि के वेदन के समय शेष 11 संग्रह पुष्टियों संबंधी अवान्तर पुष्टियों का वेदन नहीं होता और इसलिए तत्संबंधी द्वितीय स्थिति में से प्रदेश पुंज का प्रथम स्थिति के साथ संबंध नहीं पाया जाता। अंतर को उल्लंघन कर वे ही परमाणु नीचे आकर्षित हो गए जो प्रथम संग्रह पुष्टि वाले हैं, और वो सब के सब नहीं आए हैं, पहले समय में थोड़े आएंगे, वो तो आते रहेंगे नीचे। इसी कारण प्रकृत में उक्त 11 संग्रह पुष्टियों संबंधी प्रदेश पुंज का प्रथम स्थिति में निषेध किया गया। जब पुष्टि करने का कार्य चल रहा था ना, तब पुष्टि में से कोई परमाणु नीचे नहीं आ रहे थे, पहली स्थिति में तो पूर्व अपूर्व स्पर्धक ही आ रहे थे, पुष्टि होकर ऊपर ही ऊपर पड़ी थी। अब जब पूर्व अपूर्व स्पर्धक उच्चिष्ठावली को प्राप्त हुए तब जाके प्रथम संग्रह पुष्टि के परमाणु नीचे आए, उसकी प्रथम स्थिति बनी, यानी वो सिलेक्टेड परमाणु ही नीचे आएंगे पहले में, ये बात यहां जाहिर होती है। इस प्रकार इतने प्रबंध इसने हुए, इतने प्रबंध द्वारा ठिदीसु व केतियासु का ठिदी इस प्रकार मूल गाथा के इस वचन का आश्रय कर किट्टी च ठिदि विशेषेषु असंख्येषु इस प्रथम भाष्य गाथा संबंधी पूर्वार्ध की प्ररूपणा कर अब कदिसु अनुभागेषु च मूल गाथा के इस वचन का आश्रय कर नियमा अनुभागेषु च अनंतेषु भाष्य गाथा था करना। भाष्य गाथा संबंधी इस उत्तरार्ध की प्ररूपणा करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। एक एक का किट्टी अनुभागेषु अनंतेषु एक एक संग्रह पुष्टि अनंत अनुभागों में रहती है। एक एक संग्रह पुष्टि अथवा उनकी अवयव पुष्टि नियम से अनंत अनुभागों में रहती है। इस वचन द्वारा संख्यात और असंख्यात अनुभागों में कृष्टियां संभव नहीं है इस बात का ज्ञान करा दिया, यानी उसके अविभाग प्रतिच्छेद भी अनंत ही होते हैं, क्योंकि सबसे जघन्य कृष्टि में सब जीवों से अनंत गुणी अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। अब एक एक कृष्टि असंख्यात स्थिति विशेषों में रहती है, ऐसा कहने पर जिस प्रकार सब कृष्टियों का सब स्थिति विशेषों में अवस्थान संभव हो जाता है, इसी प्रकार प्रकृति में भी एक एक कृष्टि अनंत अनुभागों में रहती है। इस प्रकार इस वचन से एक विवक्षित कृष्टि का अपने अपने अनुभागों में जिस प्रकार रहना संभव है, उसी प्रकार शेष कृष्टियों के अनुभागों में भी रहना संभव प्राप्त होता है। इस प्रकार इस तरह की विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। ये विप्रतिपत्ति यानी अनुपपत्ति, जिसका कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या कहना चाहते हैं, एक कृष्टि ने उसका विशिष्ट अनुभाग तो अपने रूप से रहेगा ना। जो परमाणु जिस अनुभाग में है उसी समय क्या वो दूसरे अनुभाग से रूप से रहता है? नहीं रहता। तो कहेंगे एक कृष्टि अपने रूप से दूसरे रूप से नहीं है। पहले में पहले क्या कहा, अनुभाग और निषेक में कंपेयर किया, कोई विशिष्ट कृष्टि सभी निषेकों में होती, तो क्या एक ही कृष्टि अन्य कृष्टि में भी होगी? ये कैसे होगा? ये बात बता रहे, जैसु पुनः एकाना तेसु विधिया, किंतु जिन अनुभागों में एक कृष्टि रहती है उनमें दूसरी कृष्टि नहीं रहती, क्योंकि कृष्टि उसको कहेगी अलग अलग अनुभागों वाली है। परंतु जिन अनुभागों में उसी का भी यहाँ बता रहे हैं, यानी कृष्टि किसको कहेंगे, विशिष्ट अनुभाग वाली, और दूसरी कृष्टि उससे अनंत गुणा वाली होगी। तो एक कृष्टि दूसरे कृष्टि रूप नहीं है ना वहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो एक निषेक के परमाणु उसी निषेक में कहेंगे ना, वो एक निषेक दूसरे निषेक रूप नहीं है, प्रत्येक निषेक अलग अलग है। ऐसे एक कृष्टि दूसरे कृष्टि रूप नहीं है
उसके।
एक एक कृष्टि सभी निषेकों में होती है ये तो बता चुके, परंतु एक कृष्टि दूसरे कृष्टि में नहीं है भी बता, वो तो जाहिर ही है ना। जिस परमाणु का एक समय में जो अनुभाग है वो उस समय वही है ना, वो तो वो चेंज नहीं हो रहा है, या क्या कहते हैं? परंतु जिन अनुभागों में एक विवक्षित कृष्टि रहती, विवक्षित शब्द रहा है ना, पर्टिकुलर यानी उसका कुछ विशिष्ट अनुभाग है, उन्हीं अनुभागों में अन्य कृष्टि नहीं रहती। उसी अनुभाग में अन्य कृष्टि रहेंगे तो उसको दूसरी कृष्टि क्यों कहेंगे? किंतु उस अनुभाग से भिन्न स्वभाव वाले ही अनुभागों में वह दूसरी कृष्टि रहती है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो ये अनंत कृष्टि कैसे कहेंगे आप? अनंत अलग अलग कृष्टि इसीलिए कही है क्योंकि हर एक का अपना अपना अनुभाग अलग अलग, क्योंकि प्रत्येक कृष्टि का अनुभाग जघन्य कृष्टि से अनंत गुण वृद्धि रूप वृद्धि को प्राप्त हुआ है। इसलिए परस्पर के परिहार रूप से ही कृष्टियों में अनुभाग के अवस्थान का नियम देखा जाता है। उसको कृष्टि नाम ही इसलिए दिया है, एक एक संग्रह कृष्टि की पहली दूसरी तीसरी चौथी, क्योंकि उसमें अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा का डिफरेंस है, और एक एक कृष्टि में अनंत अनंत परमाणु भी हो गए, यानी विशिष्ट अनुभाग वाले परमाणु अनंत, उसको हमने एक कृष्टि नाम दिया तो उसका अपना अनुभाग निश्चित है। दूसरी जो कृष्टि होगी उसमें अपने अनंत परमाणु, उसका अनुभाग उससे अनंत गुणा है, तो एक ही निषेक में इतनी अनंत कृष्टि है, तो एक कृष्टि दूसरे कृष्टि रूप नहीं है ना वहां पर, उसमें डिफरेंस है। एक अवयव कृष्टि में समान है, परंतु एक अवयव कृष्टि का दूसरे अवयव कृष्टि के समान है क्या?
वो तो समझ में आता है,
हाँ वही बता रहे।
अभी जो हमने
वो हर एक निषेक में सभी है, उसकी बात हो चुकी, एक निषेक में सभी अनंत कृष्टियां है वो बात हो चुकी, अब एक अवयव कृष्टि दूसरे अवयव कृष्टि रूप नहीं है ये बात बता रहे।
नहीं, 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 मेरा प्रसन्न होता है कि ये जो नीचे जो प्रथम स्थिति में जो पृष्ठ की रचना हुई, जो पृष्ठ ऊपर से नीचे आई प्रथम शक्ति, वहाँ पे जो फर्स्ट निश्चय में जो एकमय पृष्ठ की कभी हो
सभी अनंत है। एक एक निषेक में अनंत अवयव पृष्ठिया, पूरी प्रथम संग्रह पृष्ठि आई है ना नीचे, तो एक एक निषेक में अवयव पृष्ठि कितनी है? प्रथम संग्रह पृष्ठि के सभी है, सभी है, सभी है, सभी है, परंतु एक पृष्ठि दूसरे पृष्ठि रूप है क्या? नहीं, नहीं, यही बात यहाँ बता रहे। वो तो निषेक की बात बता चुके कि उदय रूप निषेक में तो बीच वाले असंख्यात पृष्ठि रूप से है, परंतु असंख्यात नहीं है, तो अनंत असंख्यात बहुभाव वाली है, परंतु उदय को छोड़ो तो बाकी जो प्रथम स्थिति के निषेक है, एक एक निषेक में प्रथम संग्रह पृष्ठि की जितनी अंतर पृष्ठि अनंत है वो सभी वहां पड़े, और एक एक पृष्ठि में अनंत अनंत परमाणु, तो एक निषेक में कितने परमाणु हो गए इमेजिन करो। एक पृष्ठि में अनंत, ऐसे पृष्ठि अनंत, वो एक एक निषेक में पड़ी है। यहाँ क्या कहते हैं कि एक पृष्ठि का अनुभाग दूसरे पृष्ठि के समान नहीं है, ये बात बता रहे, इसलिए परस्पर के परिहार रूप से ही पृष्ठियों में अनुभाग के अवस्थान का नियम जाता है, देखा जाता है, इसीलिए उसको अलग अलग पृष्ठि है ऐसा कहीं है, अंतर पृष्ठिया या अवयव पृष्ठिया अनंत है। अनंत है का अर्थ क्या है? एक पृष्ठि से दूसरा अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणा, उससे तीसरे का अनंत गुणा, उससे चौथे का अनंत गुणा, इसलिए उन पृष्ठियों के अनुभाग के विषय में परस्पर संकर का प्रसंग नहीं प्राप्त होता, यानी एक पृष्ठि का अनुभाग दूसरे पृष्ठि के समान हो ऐसी बात ही नहीं होती वहां पर। इस प्रकार यही सूत्र का भावार्थ है। विशेषार्थ, लोभ संज्वलन की तो जघन्य पृष्ठि है, लोभ संज्वलन की जो जघन्य पृष्ठि है उसमें जो अनुभाग अर्थात फलदान शक्ति यानी जो अनुभाग पाया जाता है उससे दूसरी पृष्ठि में अनंत गुण वृद्धि को लिए हुए अन्य ही अनुभाग यानी फलदान शक्ति पाया जाता है। अवयव पृष्ठि आशय यह है कि पृष्ठियों का विभागीकरण ही अनुभाग भेद से किया है, तभी तो उसको पृष्ठि नाम प्राप्त। इसलिए उक्त सूत्र में यह कहा है कि जिन अनुभाग में एक पृष्ठि रहती है उनमें दूसरी पृष्ठि नहीं रहती, क्योंकि पृष्ठि ये अनुभाग की अपेक्षा ही भेद करने पर इनके नाम पृष्ठि थे। पहले स्पर्धकों में हम भेद करते थे, वर्गणाओं में भेद करते थे, अभी पृष्ठियों में भेद कर दे। स्थिति की अपेक्षा तो हम एक स्थिति का निषेक हम कहेंगे ना, उसका दूसरे निषेक के साथ एक समय वाला डिफरेंस है, और यहाँ एक एक पृष्ठि का दूसरे पृष्ठि के साथ अनंत गुणा वाला डिफरेंस है। किंतु स्थिति के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठि में अनंत परमाणु होते हैं, इसलिए उनका अपनी सभी स्थितियों में पाया जाना संभव है। अतः अनुभाग के समान स्थिति के विषय में ऐसा विभाग नहीं किया जा सकता, यानी एक ही पृष्ठि के परमाणु असंख्यात स्थितियों में पाए जाते हैं। जब एक पृष्ठि कही तो विशिष्ट अनुभाग वाले समान धन वाले परमाणु, समान अविभाग वाले परमाणु कहाँ कहाँ हो गए? पहले दूसरे तीसरे सभी निषेकों में पाए जाते हैं। इसके एक पृष्ठि सभी निषेकों में, उसका एक ही पृष्ठि नाम देना, जघन्य पृष्ठि कहाँ कहाँ है? सभी निषेकों में पड़ी। उसके ऊपर अनंत अनुभाग बढ़कर जो दूसरी पृष्ठि है वो भी सर्वत्र पड़ी है, परंतु एक पृष्ठि अन्य पृष्ठि में नहीं। निषेक जब कहेंगे तो स्थिति की अपेक्षा बात है, और पृष्ठि जब कहेंगे तो अनुभाग की अपेक्षा बात है, तो एक अनुभाग दूसरे अनुभाग रूप कैसे होगा? उसमें तो अनंत गुणा वाला डिफरेंस है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा प्रथम भाष्य गाथा के अर्थ की प्ररूपणा समाप्त करके अब दूसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हुए चूर्णी सूत्रकार इस सूत्र को कहते हैं। विधियाए भाषगाए समुकीर्तना। अब दूसरी भाष्य गाथा की समुकीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है। यहाँ पढ़ेंगे हम सौवाओ किट्टियो विधिये दुवंति सौविसे जम किट्टिम वेदय दे तिस्से अंशो च पड़माए। सब संग्रह और अवय पुष्टियां समस्त द्वितीय स्थिति में होती है, किंतु यह जीव जिस संग्रह पुष्टि को वेदन करता है उसका एक भाग कितना, एक भाग प्रथम स्थिति में होता है, क्योंकि उतने थोड़े ही परमाणु आए ना नीचे और पहली स्थिति बनी, बाकी तो ऊपर अपने अपने निषेकों में पड़े हैं उस रूप से।
पर अभी यहाँ पे एक है तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता
है। आप बार बार स्थितियों की और अनुभव की गंभीरता नहीं, ये कंफ्यूजन हो रहा है आपका। पहले गुणश्रेणी निर्जरा, गुणश्रेणी रचना तो प्रदेशों की अपेक्षा हो गई, तो उसमें सभी प्रकार की कृष्टिया है कि नहीं है। ये आप कहते हैं इसी गुण श्रेणी हुई, तो यहाँ तो पृष्टि की बात चल रही है। इसमें भी सभी अनंत पृष्टिया, इसमें भी सभी अनंत है, इसमें भी सभी अनंत है, इसमें भी सभी अनंत, तो बात क्या हुई अभी? इस सभी में सभी प्रथम संग्रह पृष्टि के सभी अंतर अवयव पृष्टि आ गए। अभी क्या प्रश्न है?
एक भाग प्रथम से जितनी ऊपर बनी थी उसका अनंतवा भाग ही नीचे आया, ऐसे कहना है। जितनी संग्रह प्रथम संग्रह पुष्टि ऊपर बनी है उसका एक भाग ही प्रथम स्थिति में होता है, ऐसा समझना चाहिए।
एक भाग
ज्ञानी एक भाग के छह भाग नहीं, एक भाग क्योंकि हमने प्रतिनिषेक जो वहां पे सभी संग्रह, अरे एक संग्रह पुष्ट एक सभी अभी पुष्ट हो गया, कुछ भाग ऐसा नहीं है।
वो उदय रूप की बात है, कुछ भाग जिस संग्रह पुष्टि का वेदन करता है, वेदन करता है प्रथम स्थिति नहीं कही, वेदन करने नहीं उदय रूप निषेक लेना। उदय रूप निषेक में कुछ भाग आया ना, असंख्या दो भाग बीच वाला,
इसीलिए मैंने पूछा था उदय रूप का असंख्या दो भाग।
हाँ, नहीं असंख्या तो भाग ऊपर का नीचे का छोड़ दो,
मैंने
पूरे प्रथम स्थिति में नहीं लेना, एक उदय रूप स्थिति में, उदय रूप स्थिति में लेना उसका। इसकी बात कल करेंगे, हम पढ़ेंगे इसको फिर दोबारा सूत्र पढ़कर। ये उदय रूप एक स्थिति एक निषेक की बात है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे नो कानो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।